अगले स्टेप पे चलेंगे। एक खूबी हमने काफ़ी डिटेल से देख ली कि इंसान को मुसबत सोच का हामिल होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए और हर चीज़ को अच्छा ले, ये खुशियों का एक किस्म का दरवाज़ा उसकी ज़िंदगी में खुलाएगा। आप कहेंगे कि हमने सुन लिया तो बस अब हम बदल जाएंगे। नहीं बदलेंगे। अपनी जगह से पहाड़ों को हटाना आसान है, लेकिन पहाड़ों से ज़्यादा घड़ी हुई आदत को अपनी जगह से हटाना इससे भी मुश्किल है। इसके लिए आपको थोड़ी सी स्किल्स चाहिए। मैं अगली आदत पे बात करने से पहले थोड़ी सी बात मज़ीद आपकी पर्सनैलिटी और आपकी आदत पे करूँगी ताकि आप ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठाएं। हम इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं कर रहे ये कोर्स, सिर्फ हमने ख़ुद को बदलना है और इन सारी बातों से फ़ायदा वही उठाएगा जो वाकई ख़ुद को बदलना चाहता है। और ख़ुद को सोचे बगैर, ख़ुद को बदलने की नीयत किए बगैर इन बातों को सुनना ऐसे ही है कि आपकी नीयत ना हो किसी जगह जाके खाना खाने की और आप वहाँ बैठ के खाने का ऑर्डर दे दें। खाना आ भी जाएगा तो फ़ायदा बहरहाल उससे नहीं होगा। तो हमने बात की थी कि आदत क्या होती है। आदत वो चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी होती है। आदा या उदू को लफ्ज़ अगर आप पीछे ले जाएं तो ईद का लफ्ज़ भी इसी से है। ईद किसको कहते हैं? बार बार आने वाली चीज़। लफ्ज़ ईद के साथ ही हमारे पास खुशी का एक तसव्वुर आता है ना, लेकिन ईद की असल लफ्ज़ में जो चीज़ है वो दोहराई जाने वाली चीज़। तो आदत ता क्या है इसमें? मुअन्नस की है। असल लफ्ज़ आदा है। कोई आपसे पूछे आदत का रूट क्या है तो आइन दाल ता नहीं करेंगे। एक एंगल से बनता भी है उद्दा के मानों में। जब सूरह तौबा में आप पढ़ते हैं ना कि उद्दू अदद गिनती इद्दत, वो भी बनता है। बहरहाल इस वक्त कोई ये ग्रामर की क्लास नहीं है, हम बात कर रहे हैं अपनी आदत पे और ख़ुद को बेहतर करने के लिए हम अपने आप को ये सारा कोर्स कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी में इसकी खुशी पाएंगे, जब हमें इसके बाद कामयाबी मिलेगी, तो वो दिन हमारे लिए हमारी बर्थडे से भी ज़्यादा अहम होगा, हत्ता कि हमारी शादी से भी ज़्यादा अहम होगा। सारी ज़िंदगी हम दूसरों के साथ मामला करते हुए गुजार देते हैं, लेकिन बहुत कम वक्त मिलता है हमें अपने बारे में सोचने का। तो आप सबसे पहले इस वक्त अपने आप को इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि जो बातें आप सुन रही हैं या जिस बातों को आपके कान सुन रहे हैं, आप उसको ज़रूर अपनी ज़ात में डालने की कोशिश करेंगी और आप कभी भी नाकाम नहीं होंगी इससे इंशाल्लाह ताला। अपनी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो इसके लिए चंद एक्टिविटीज़ कीजिए। नंबर एक, आईने के सामने खड़े हों तो अपने बारे में कोई पॉजिटिव बात कहें। आज आपकी एक एक छोटी सी एक्टिविटी या एक होमवर्क है, आपने आईने में खड़े होकर अपने बारे में कोई अच्छी बात कहनी है। ये भी एक किस्म की पॉजिटिव थिंकिंग का भी इजहार होगा और आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगी ये चीज़। कोई भी चीज़ जो आपको अपने बारे में अच्छी लगती है उसका तذکرہ करेंगे। फिर दूसरी बात ये है कि अपने बारे में कायम करदा किसी गलत अंदाजे से, यानी बाज़ दफ़ा आपके बारे में भी लोग गलत अंदाजे लगाते हैं और बाज़ दफ़ा आपने ख़ुद भी लगाए होते हैं। मसलन कोई आपको कहता है कि आप बहुत झगड़ालू हैं। अब आप सोचिए, मेरी नंद ने मुझे कहा कि भाभी बड़ी झगड़ालू है, या मेरी भाभी ने कहा फलां, या मेरी सास ने कहा, या मेरे कुलीग्स ने कहा कि क्या तुम हर वक्त झगड़ती हो। अब ये जुमला जो आपने कहीं भी अपने बारे में सुना है, आप उसके ऊपर गौर करें। ये आपकी दूसरी एक्टिविटी है। अब थोड़ा सा वक्त ख़ुद को दें और सोचें कि मुझे क्या लोग कहते हैं। मिसाल है कि तुम हमेशा लेट आती हो, मिसाल है कि तुम मौका देख के बात नहीं करती, या मिसाल ये है कि तुम हमेशा जल्दी में होती हो। बस लोग होते हैं ना, वो कहते हैं मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। भाई जाइए, यकीन करें मैंने देखा 15 मिनट बाद भी वो वहीं थी, आधे घंटे बाद भी वो वहीं थी। मैंने कहा ये मेरे से जान छुड़ाते हुए कह गई हैं, वरना अभी जाना कोई नहीं। बाज़ लोग कह रहे होते हैं मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, फिर कोई बात शुरू होती है तो आधा घंटा खड़े सुनते रहते हैं, क्योंकि बात में इंटरेस्ट होता है, उनका बेनिफिट होता है या उनको मज़ा आ रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा कुछ बातें जो लोग हमारे बारे में कहते हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होती हैं। सोचे फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कोई एक ऐसा अमल आप करें जो उस अंदाजे से बिल्कुल उलट हो। अब जो भी मिसालें आप अपनी ज़िंदगी में ढूंढिए कि जो भी लोग आपके बारे में कह रहे हैं, पहले सोचा, फिर कोई एक अमल ऐसा कीजिए कि जो उससे ऑपोजिट हो, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा इंशाल्लाह। मिसाल यही दी आपको कि कोई कहता है क्या वक्त पे नहीं आती तो आ जाइए, कोई आपको कहता है बहुत बोलती हैं तो फिर आप किसी महफिल में खामोश रह के दिखाएं, इंशाल्लाह इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर तीसरी चीज़ जो इंशाल्लाह ताला आपके फ़ायदे की होगी वो क्या है, अपने किसी अज़ीज़ करीबी दोस्त रिश्तेदार के बारे में सोचें, किसी एक को भी फोकस करें जिसने आपके साथ बुरा मामला किया हो, ये भी आप लिख के करेंगे, उस बात को लिखिए और फिर गौर करें कि उसने ऐसा क्यों किया। आप देखेंगे कि गौर करने के बाद आपको लगेगा नहीं, गलती मेरी भी थी, कसूर मेरा भी था, मैं ही ऐसे गुस्सा कर गई, मैं ही चुप रहती, मैं क्यों बोलती रहती हूँ हर वक्त, मैं क्यों हर एक के मामले में टांग अटकाती हूँ। इस तरह से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ अपने आप से खुद पूछनी है, मेरा वक्त और कुव्वत यानी एनर्जी एंड टाइम किस चीज़ पर खर्च हो रही है, क्या मैं ये दोनों चीज़ें अपनी ज़ात के दिफा में तो नहीं खर्च करती रहती। मतलब पर्सनैलिटी के मामले में एक ये भी होता है, हम साथ आंसू पोंछते जाते हैं, साथ नाक साफ़ करते जाते हैं, रो रो के कहते नहीं अल्लाह की कसम ऐसी नहीं हो, आप मुझे सही समझे नहीं, आपने तो आज तक मुझे समझा ही नहीं, आप तो मेरे बारे में हमेशा गलत ही सोचते हैं। ये एटीट्यूड अगर हमारा है तो सोचिए कि मेरी एनर्जी कहाँ लग रही है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी इंशाल्लाह आपने ख़ुद से करनी है, आज से लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करूँगी जो मैं अपने लिए पसंद करती हूँ कि वो मेरे साथ करें। मसलन बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, गुस्से में बोलने नहीं लग जाना, किसी की इंसल्ट नहीं करनी, किसी को बुरे अल्फाज से नहीं पुकारना, ये आपने एक छोटी सी एक्टिविटी अपने साथ करनी है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि बिल्कुल तन्हाई में बैठ जाएं, यानी अकेले बैठ जाएं किसी भी जगह, हाथ में कागज़ कलम ले लें और लिखें मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। हम इंसान कई खानों में बटे होते हैं ना, तो आप हर खाने को अपने पेपर पे एक बना लें, माँ होने के नाते वट एवर, लेकिन ओवरऑल आपका जो ज़िंदगी का मिशन है ना उसकी ज़िम्मेदारियों को लिखिए। फिर इसी तरह एक और चीज़, अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, आज के दिन की अपनी कोई मुश्किल सोच लें और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो ख़ुद से मुखातिब हों, तन्हाई में थोड़ा सा बोलें, खुद कलामियों की आदत डालें और ख़ुद को कहें इन हालात में मुझे क्या करने की ज़रूरत है, कौन सा असूल अपनाऊंगी तो इन हालात से निकल जाऊंगी। खुद से अपनी तकलीफ़ों से निकलने का तरीका पूछें। बस लोग बहुत बातें करते रहते हैं, फिर आप उनसे पूछें कि आप चाहते कि आपने क्या करना है क्या किया, तो उनको ख़ुद भी नहीं पता होता। इस तरीके से आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जब करते जाएंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा ख़ुद को कवर करेंगे। आप देखिए कि आज हर बंदा चेंज की बात करता है ना, पाकिस्तान के हालात बदलें, मुसलमानों के बदलें, अमेरिका के बदलें, चाइना के बदलें, लेकिन याद रखिए हर बंदा जो दूसरों को बदलना चाह रहा है ना उसके लिए सबसे पहले ख़ुद को बदलना है। एक बड़ी खूबसूरत सी कोटेशन किसी के बारे में पढ़ी, एक शख्स था, पादरी था, वो क्रिश्चियन प्रीस्ट था, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको उसकी कोटेशन। कहता है जब मैं छोटा और आज़ाद था तो मेरे तसव्वुरात की कोई हद ना थी, मैं दुनिया को तब्दील करने का ख्वाब देखता था। बच्चे मोमन ऐसे ही कहते हैं ना, हम बड़े होकर ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी पूरी दुनिया के ख्वाब देखते हैं। फिर जब मैं बड़ा और अक्लमंद हुआ तो ये जाना कि दुनिया तब्दील नहीं होगी। फिर मैंने अपनी सोच महदूद की, अब बड़े दायरे में से करीब ला रहे अपनी सोच को, और सिर्फ अपने मुल्क को तब्दील करने का सोचा कि चलो कुछ नहीं मैं अपने मुल्क को चेंज कर लेता हूँ। जैसे आप और मैं कहें कि हम पाकिस्तान को बदल लेते हैं, जाके फटाफट एक 10 दिन का ट्रिप बनाते हैं, पाकिस्तान को बदल के आ जाएंगे। ताहम ये भी मुश्किल मालूम हुआ, कौन बदलेगा, आप अपने बच्चों को नहीं बदल सकते, आप पूरे मुल्क के लोगों को कहाँ बचेंगे। कहते हैं कि फिर मैं मज़ीद बड़ा हुआ तो आखिरी कोशिश के तौर पर अपने ख़ानदान और करीबी लोगों में तब्दीली लाने की कोशिश की कि चलो अब मैं ख़ानदान को बदलता हूँ। बस आप कहते हैं मैं अपनी अम्मी को बदलती हूँ, मैं अपने शौहर को बदलती हूँ, इस तरह से, लेकिन ये भी ना हो सका, ख़ानदान को भी ना बदले। और फिर ये लिखते हैं और अब मैं बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ ये सोच रहा हूँ। यानी जब मौत का वक्त आया तो पहली मर्तबा मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं पहले अपने आप को ही तब्दील कर लेता और इसे मिसाल बनाकर अपने घर वालों, दोस्तों को, फिर उनकी मदद से मुल्क वालों को और उनकी मदद से दुनिया को तब्दील करता तो मैं कामयाब हो सकता था। बात सच है कि झूठ है? तब्दीली अंदर से आती है। अंदर सेहत आएगी तो बाहर रंग अच्छा दिखेगा। बाहर से बहुत कुछ नहीं होता। माशरे में कोई मुकाम हासिल करना हो उसके लिए सबसे पहले अपनी ज़ात में लड़ी जाने वाली जंग जीतनी लाजमी होती है। हर तब्दीली का आगाज़ आपसे होगा। आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली चाहती हैं ना, अपने हालात में, घर वालों से, शहर वालों से, मुल्क वालों से, पहले आप ख़ुद को चेंज करें। एक शख्स था तो वो फुटबॉल की टीम में दाखिल हुआ, बहुत खेलने के शौक़ में था। कहने लगा कि मेरी एक दिन, जिसको कहते हैं कि मेरी आंखें खुल गईं, मेरे कोच ने मुझे एक जुमला बोला। वो जुमला क्या था? कोच कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम बेदिली से खेल रहे हो, अगर यही सूरत हाल रही तो जूनियर खिलाड़ी तुमसे आगे निकल जाएंगे। अब ये जुमला था, जैसे माएँ भी कहती हैं तुम कर लो नहीं तो छोटा भाई ये कर लेगा और वो आगे निकल जाएगा। कहता है कि इस जुमले ने मेरे दिल के अंदर हलचल मचा दी। मेरे से बाद वाले, मुझसे छोटे लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। काफ़ी दिन कहता है कि मैं इस चीज़ पे परेशान रहा, मैंने अपने अंदर किया, मुझे इस बात से इतना रिएक्शन हुआ कि मैंने सोचा मैं छोड़ देता हूँ जो मैं काम करने लगा हूँ। लेकिन 2-3 दिन की अंदर की जंग के बाद कहता है मैं जीत गया, कि मैंने खुद को कहा नहीं, मेरे अंदर अच्छा खिलाड़ी बनने की खूबी है और मैं लड़ूंगा और खेलूंगा। और फिर जब इस तरह से कोशिश की तो उसके बाद वो कामयाब हो गया। आर्नल्ड एक बहुत बड़ा मुफक्कर था, कहता है हकीकी अलमिये का शिकार वो शख्स है जिसने अपनी सलाहियतों से फ़ायदा ही नहीं उठाया और अपने पूरे कदो कामत के साथ खड़ा ही नहीं हुआ। अलमिया क्या होता है? अलमनाक खबर, अलमिया हो गया, दुख की बात, पेनफुल थिंग, रियलिटी। यानी किसी इंसान ने अपनी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाया, ये है सबसे बड़ा अलमिया। जब हम अपनी चीज़ों से फ़ायदा खुद नहीं उठाते तो नतीजा क्या होता है कि दूसरों को भी फ़ायदा नहीं देते। तो अंदर से बाहर की जानिब तब्दीली आती है। हम ख़ुद को बदलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। एक छोटी सी बड़ी दिलचस्प किस्म की एक्टिविटी मज़ीद करवाना चाहूँगी। आप सब बैंक के लफ्ज़ से तो आगाह है ना, मोस्टली बैंक में क्या कुछ होता है? नंबर एक, हमारा एक अकाउंट होता है। फिर दूसरी बात है कि हम उसमें कुछ डिपॉज़िट कराते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसमें से कुछ निकलवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप लिखिए अपने पास, अब यहाँ एक छोटा सा माइंड मैप बना सकते हैं अपने कोई भी इमेजिनेशन से, कि आप अपनी ज़ाती खूबियों का बैंक अकाउंट बनाइए। यानी एक बैंक बनाए अपने नाम का, सदफ बैंक, बुशरा बैंक, फातिमा बैंक है, अब ये बैंक है। आप अपनी अच्छी आदत को अपने डिपॉजिट्स बनाएं, अपनी पर्सनैलिटी को देखें। कैसे? अच्छी चीज़ें क्या होती हैं कि आप बहुत रिच हैं, ये बैंक बहुत अच्छा चल रहा है, और ऑपोजिट वे क्या है? दूसरी तरफ आप एक कॉलम बना लें, एक तरफ लिखें कि कौन सा आपकी शख्सियत का बैंक कामयाब है। नंबर एक, आप अब कुछ टेस्ट करेंगे, 1-2 क्लिक क्लिक करेंगे कि क्या आप में ये है, तो इसका मतलब कि आपके बैंक में इतनी मनी है, या दूसरी तरफ बैंकरप्सी फाइल हुई है। कितने लोग सोचते हैं कि बैंकरप्सी फाइल हुई हुई है हमारी पर्सनैलिटीज़ की, और कितने समझते हैं कि माशाल्लाह अपने कदमों पे खड़ा हुआ बैंक। तो लिखिए तही दामन, यानी वो बैंक जो अब डूबने के करीब है, बिल्कुल आखिरी दम है। नंबर एक, आप बआसानी दबाव का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले, जो मर्ज़ी आपको दबा ले फौरन चल पड़ते हैं। दूसरी अलामत, आपको डिप्रेशन और एहसास कमतरी का सामना है। यानी आप अगर डिप्रेस रहती हैं या आप एहसास कमतरी में, तो समझें कि आपका बैंक अकाउंट खाली है, आपकी पर्सनैलिटी खोखली। तीसरी बात, तीसरी अलामत ढूंढनी है आपने, आपको इस बात का ज़रूरत से ज़्यादा एहसास है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सेल्फ सेंटर्ड है, आपको हर बार कोई बात करता है आपको लगता है ये मेरी बात कर रहा है, कोई रूल होगा आप कहेंगे ये मेरे लिए बना है, इस तरह की कैफियत। चौथी बात, आप अदम तहफ़ का एहसास छुपाने के लिए तकब्बुर वाले रवैये की अदाकारी करती हैं। यानी आप बहुत इनसिक्योर्ड हैं असल में, और ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। खुद अंदर से हम इनसिक्योर होते हैं ना, तो बाहर बहुत बड़े बन के दिखाते हैं, झुकेंगे नहीं, किसी की तारीफ नहीं करेंगे, स्माइल नहीं करेंगे, किसी से मोहब्बत महसूस होगी तो इजहार नहीं कर पाते, गुस्सा आया होगा अंदर खाएंगे, अपने होंठ काटेंगे लेकिन अगले को कुछ नहीं कह सकते। इनसिक्योर पर्सनैलिटी होती है। फिर इसी तरह अगली अलामत बिल्कुल बैंकरप्सी वाले अकाउंट की, और वो क्या है कि आप बहुत जल्द हसद का शिकार हो जाते हैं, खसूसन उस वक्त जब आपका कोई करीबी शख्स कामयाबी हासिल कर ले। एक और चीज़ आखिरी है, इसके बाद आप थोड़ी सी लाइनें छोड़ के ख़ुद अपनी खुद भी ढूंढ सकते हैं, हर इंसान के हालात मुख्तलिफ होते हैं। अगली चीज़ जो आपके बैंक अकाउंट के बिल्कुल ख़ाली होने की अलामत है, वो क्या है कि आप दूसरों को नुकसान देने की तरकीबें सोचते रहते हैं। लेग पुलिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसको गिरा के मैं चढ़ जाऊँ आगे, ये रवैया। अब चलते हैं दूसरे एंगल पे। आपका अकाउंट फुल है माशाल्लाह, भरपूर अकाउंट है, इसकी कुछ अलामतें। नंबर एक, आप अपने लिए जिद्दोजहद और हर दबाव का मुकाबला कर सकते हैं। कोई बात नहीं जी, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई आपको दबाव में डाले आप उसका कोई वे आउट निकाल लेंगे। दूसरी इसकी अलामत क्या होती है, आप मकबूलियत हासिल करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, यानी मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जानने लगे, मैं मशहूर हो जाऊँ, ये सोच नहीं होगी आपकी। अब है कि नहीं, अब आपने रिजेस नो करने हैं बाद में, फिर आपका टेस्ट होगा। तीसरी चीज़, आप ज़िंदगी को एक मुस्बत तजुर्बे के तौर पर देखते हैं। अगली, आपको खुद पर एतमाद है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं आप इंशाल्लाह। नेक्स्ट, आप अपने मकासद मुतय्यन कर चुके हैं, यानी मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या, अब आपको पता लग गया है। उस शख्स की तरह बिस्तर मर्ग पे ना पता चले कि मैं अपने आप को बदलता तो बाकी काम भी कर पाता। नेक्स्ट थिंग क्या है, आप दूसरों को कामयाब होता देखकर खुश होते हैं। दो तीन लाइनें छोड़ दीजिए, आप कुछ एथिक्स इसमें और भी डाल सकते हैं। अब आप सोचिए 10 सेकंड, आपके बैंक में ज़्यादा है कि कम है? यकीनन कुछ को लगेगा सिमिलर, आधी अच्छी आधी बुरी हैं, कुछ को सारी अच्छी भी लग सकती हैं, कुछ को सारी बुरी भी लगती हैं। हम बात कर लेते हैं बीच की। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी का अकाउंट अच्छी चीज़ों से ज़्यादा भरा हुआ नहीं, तो क्या करें बोला, परेशान ना हो, सरमाया जमा कर लें और मनी मंगाएं और अपने बैंक में डाल लें। यही सफ़र है हमारा इंशाल्लाह इस सफ़र का, कि हम अपनी खूबियों के अकाउंट को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें इंशाल्लाह फ़ायदा लाएंगे। मसलन कैसे, अब ये बैंक आपको स्कीम देती है ना कि हम क्या करें, तो नंबर एक, आप क्या चीज़ डिपॉज़िट करें। अब आप फिर आगे एक और कॉलम बनाएं, डिपॉज़िट्स और निकालने वाला सरमाया। डिपॉज़िट्स वो हैं जो चीज़ें आपने अपने अंदर लानी है इंशाल्लाह, और निकलवाने वाली चीज़ें क्या हैं जो इंशाल्लाह आपने अपनी आते छोड़नी है। डिपॉज़िट्स को पहले देखते हैं। नंबर एक, ख़ुद से किए गए वादों पर कायम रहें, जब आप सोच लें मैंने ये काम करना है तो करके रहें। दूसरी बात, दूसरों के काम आए, इससे आप देखेंगे कि आपका बैंक बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। अगर ख़ुद से किए गए वादों पे बात देख लें, तो इसमें आप इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्रेंचाइज कर सकते हैं। मसलन किसी को आपने कहा मैं फ़ोन करूँगी, तो कीजिए, वहाँ चलेंगे तो जाइए। अपने इरादों को खुद ना तोड़ें, मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँगी तो उठ जाएं, आज नमाज पूरे वक्त पे पढ़ूंगी अव्वल अजान के साथ, कीजिए। आज सोने से पहले अगले दिन की पूरी तैयारी करके सोऊंगी, ऐसे कीजिए खुद, और फिर इससे खुद से कीजिए। सबसे मुश्किल खुद से किए हुए वादे निभाना होता है, क्यों कि दूसरों से तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन खुद से हम नहीं कर पाते। अच्छा, आप इसके लिए पहले छोटे छोटे इरादे करें, जो नाकाबले तस्खीर चीज़ है ना इस वक्त आपके लिए, अभी वो इरादा भी ना करें। टेक स्मॉल बाइट्स, छोटे छोटे बाइट्स लीजिए, बड़े भी आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरों के काम आने की बात आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती है। एक शख्स था, साइकेट्रिस्ट था, कोई उसके पास आया, कहने लगा कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करना है, और बहुत डिप्रेशन में था वो। उसने उसे कहा कि तुम ऐसे करो कि किसी के काम आओ। ये जो नशे में डूबे हुए लोग होते हैं ना, वो इसी तरह की चीज़ों से उनका इलाज करते हैं। उठो, शाबाश, निकलो, तुम निकल सकते हो इस घड़े में गिरे हुए, निकलो निकलो, कुछ नहीं होगा। तो खैर, इसने उसको कहा कि तुम किसी के काम आओ। जिस शख्स को इसने कहा कि अब तुम कोई मौका ढूंढो, इसने कहा अच्छा मैं देखता हूँ मैं कैसे काम आता हूँ। इसको किसी जगह सफ़र करना था, एयरपोर्ट पे गया, फ्लाइट के इंतज़ार में था। फर्स्ट क्लास की इसने टिकट ली हुई थी, बहुत बड़ी कुर्सियाँ भी होती हैं, खाना भी अच्छा होता है। और कहता है कि मुझे नंबर 1 सीट मिली, जो जहाज़ की सबसे प्राइम सीट होती, घुसते ही पहली सीट जो होती है ना, पूरे जहाज़ में लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें वो मिले, आगे ना जाए वहाँ जाए। कहता है कि मैं अभी वहाँ जा के ज़रा अपनी कुर्सी से इंजॉय कर रहा था, और दिस एंड दैट, मैंने देखा एक औरत जो है वो हाथ में बच्चा लिए हुए और बहुत सारा सामान लेके बैठी हुई है, पकड़ी हुई है, और वो आ रही है अंदर। कहता है कि मुझे फ़ौरन उस साइकेट्रिस्ट की बात याद आई कि दूसरों के काम आओ। कहने लगा, मैं उस औरत के पास गया, मैंने उसे कहा कि देखें आपके पास बच्चा भी है, सामान भी है, और आप खातून हैं, आप मेरी ये सीट ले लें तो मैं पीछे चला जाता हूँ आपकी सीट पे। अब आप सोच सकते हैं ना, एक जनरल सी बात है, आम हालात में कोई नहीं करते, लेकिन जब जहाज़ चल जाए तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, उनको क्या लगे। कहता है कि थोड़ी सी पसो पेश के बाद उस औरत ने मेरी इस बात को कबूल किया, हमने टिकट बदल लिए, वो मेरी पे बैठ गई, मैं सेकंड क्लास में चला गया। कहता है उस दिन जो चीज़ मैंने फील की कि जो लयर और जो आसानी के साथ मैंने सफ़र करके खुशी पानी थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश पिछली सीट में महसूस कर रहा था। उस दिन मुझे पता चला कि दूसरों के काम आकर इंसान को कितनी खुशी मिलती है। तो अगर आप कभी डिप्रेस हो ना, तो उठिए, चलो मैं किसी का काम कर दूँ, खुशी दें, किसी को रोटी पका दें, किसी का कमरा साफ़ कर दें, किसी के सर में तेल डाल दें, कुछ करें। यानी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, आपके सर में दर्द है ना, आप परेशान हैं, आप सोचें चलो मैं कोई अच्छा ऐसा काम करती हूँ कि जो मुझे खुशी दे, कोई करें, किसी छोटे बड़े घर के बंदे से, बाहर वाले से कुछ काम कर दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी अपने अंदर और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तीसरी चीज़ जो इंसान को अपने अंदर डिपॉजिट स्लिप जिसकी बना के डालनी है, वो क्या है, ईमानदार रहें। ख़ास तौर पे ईमानदार उस चीज़ के साथ रहें जो आपके साथ बहुत एहसान करें। एक जुमला लिख लीजिए, जो मुहसिनों के साथ एहसान नहीं करता, वो कभी अपनी नज़रों में उभर नहीं सकता। अपनी जॉब से ईमानदार रहें, अपनी फील्ड से ईमानदार रहें, अपने घर से, अपने शौहर से, अपने बच्चों से, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं ना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद ना करो, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। आपकी पूरी हमदर्दी होनी चाहिए अपने मिशन के साथ। बस हम सब यहाँ आके बैठे हुए ना, आप सबको चेयर्स मिली हैं, किसी को डेस्क मिला, ईमानदार रहिए, इसको साफ़ रखिए, इसको ऊपर कोई लाइन ना लगाएं, आप स्कूल के साथ सिंसियर रहें, आप अपने घर के साथ, मियाँ की चीज़ों के साथ सिंसियर रहें, ज़ाया ना करें, इस तरह से ट्रुथफुल पर्सन बने, इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। फिर इसी तरह एक और चीज़ जो है वो क्या है कि आप अपनी सलाहियतों को इस तरह से उभारें कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ नहीं है तो अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह वो कर सकता है जो आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। आपको पता है कि मोमिन कौन होता है? मोमिन अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा शाहकार है। आप इस बात में अपने आप को कहा करें कि अल्लाह तुझे पता है मैं कितना बड़ा ख़जाना हूँ, अल्लाह तूने मुझे ईमान दे के कितना कीमती कर दिया, अल्लाह इस ईमान की हिफाजत के लिए तूने मुझे किताब भी दे दी, अल्लाह मैं तेरी किताब समझने लग गई हूँ, अल्लाह मैं अरबी को पढ़ती हूँ तो मुझे उर्दू में लगता है। इस तरह रीजनिंग करें तो आप देखेंगे आप अपने आप को इतना कीमती कर लेंगे कि आपका दिल चाहेगा मैं ख़ुद को लॉकर में रखूँ। अपने आप को ज़ाया ना करें, अपने वक्त को इस्तेमाल करते हुए सोचा करें अल्लाह मैं इतनी कीमती में कहाँ लग गई। अपनी एनर्जी को, अपनी तमन्नाओं को, अपने चलने को, फिरने को देखें, इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि आपके अंदर बहुत एनर्जी आएगी। इसके ऑपोजिट अगर आप देखें जो चीज़ें इंसान के बैंक बैलेंस को नेगेटिव में ले जाती हैं, सबसे पहली वादा करके तोड़ देना। आज से लिख लें खुद से ये वादा करके कि मैंने आज के बाद जब किसी को कोई कह दी चीज़ तो मैंने उसको तोड़ना नहीं है। दूसरा नुकसानदेह पहलू क्या होता है, अपने आप तक महदूद रहना, अपनी ज़ात, अपनी ज़ातियात में ही उलझे रहना, ये भी इंसान को बहुत नुकसान देती है। तीसरी चीज़ बदतहजीबी का मुजाहरा करना। आप कितने बड़े लीडर क्यों ना बन जाएं, आप बदतहजीब बनेंगे ना तो आपके सारे वर्कर्स जो हैं और जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी नज़रों में आप गिर जाएंगे। अपने बच्चों से भी बदतहजीब ना हो, ओए तोए करके ना बात करें, कुछ ना करें, बात ना करें किसी से, बहुत आसानी होगी, लेकिन कभी किसी को तू तड़ाक ना करें, जैसे हम फौरन मुंह से बोले ओए फलां क्या किया, इस तरह का अंदाज ना हो। आप लिख लें कि मैंने आज के बाद बदतहजीब नहीं बनना, चाहे मेरे सामने छोटा हो या बड़ा हो। फिर अगली चीज़ जो इंसान की पर्सनैलिटी से डिपॉजिट्स निकाल देती है, वो क्या है, बददियानती से काम करना। फिर एक और बहुत अनयूजुअल चीज़ है जो हम में से बहुत सारे लोग कभी सोचते भी नहीं, और वो क्या है, अपनी हालत पर ही कायम रहना। मुझे अब कुछ नहीं जरूरत सीखने की, यानी अपने आप को रेनोवेट ना करना। हर दिन नई चीज़ सीखिए, हर दिन नए काम कीजिए, नई स्किल्स लाइए। कंप्यूटर नहीं आता सीखिए, ड्राइविंग नहीं आती सीख लें, बात करनी नहीं आती सीखें। कभी पीछे ना रहें कि चलो अब ये काम तो फलां कर लेगा। नहीं, खुद की हालत पे मुतमईन रहने वाला बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। फिर नेक्स्ट थिंग क्या है, अपनी काबिलियतों को नज़रअंदाज करना। आप जो कर रही हैं उस पर ना खुश हों, जो नहीं अभी कर रही हैं और कर सकती हैं उस पर आप गौर कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिर इसी तरह एक और चीज़ जो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है वो क्या है, रूढ़ होना। रूड होना क्या होता है, इसका मैं अपोजिट बोलती हूँ तो समझ जाएंगे, यानी आपने धीमापन इख्तियार करना है। जैसे शोले आहिस्ता आहिस्ता बुझते हैं ना, अपनी पर्सनैलिटी में धीमापन लाएं। अपोजिट के ढींगे मारना, अपनी बातें, हम में ये, हम तो ऐसे वो है, ये बात दुरुस्त नहीं होती। एक छोटी सी मैंने मिसाल कहीं पढ़ी, मुझे बहुत ही ज़्यादा उससे मुझे खौफ भी आया और मैंने उसे सीखा भी। कभी बंदरगाह पे खड़े हुए जहाज़ को आपने देखा है, कई जहाज़ लंगर डाले होते हैं ना। कहते हैं कि जब जहाज़ों को उनके किनारों पे खड़ा कर दिया जाता है ना, कुछ अगर कई दिन या महीनों खड़े रहे ना, तो समंदर में से एक मछली होती है, बारनेकल बोलते हैं, तो वो मछली आके ना जहाज़ के पेंदे के साथ चिपक जाती हैं, ऐसे ही जैसे सुकून लेने के लिए क्या करती हैं। फिर होता क्या है कि वो इतनी ज़्यादा वहाँ चिमट जाती हैं कि जब कभी जहाज़ को चलाना चाहते हैं ना, तो उन मछलियों के बोझ की वजह से जहाज़ डूबने लगता है। फिर वो क्या करते हैं कि जब कभी बहुत दिन खड़ा रखने के बाद जहाज़ को समंदर में डालना होता है ना, तो पहले वो नीचे से बारनेकल्स को रिमूव करते हैं कि ये मछलियाँ उतरें और उसको करें। अब करें क्या, इतनी मछलियाँ और उनका क्या तरीका इख्तियार करें। तो वो क्या कर देते हैं कि पानी में नमक की मकदार कम होने के बायस बारनेकल की आदत है कि वो जहाज़ छोड़ देती है, तो वो वहाँ से नमक निकाल लेते हैं। अब ये बात आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, हम तो इस वक्त बात समझ रहे हैं ना। वो कहते हैं कि असल बात है कि हमने अपनी शख्सियतों के जहाज़ के नीचे बहुत सारी बारनेकल्स पछतावों की रखी हुई है। आप नाकाम हो गई, बस बच्चे इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो मैट्रिक में फ़ेल हो गए थे, ताने बहुत मिले। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर से ऐसी तमाम चीज़ें निकाल दें जो आपको आपकी नज़रों में गिरा दें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत कुछ होगा। अपने आप को नया बनाएं, आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे करें कि बस अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज से आपने अपनी बेइज्जती नहीं करनी कि मुझे आता कुछ नहीं, मुझे करना नहीं आता, मैं ये सीख नहीं सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं, शर्त क्या है कि आप चाहें और फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करे। इंशाल्लाह इसके लिए ज़रूरत है सुस्ती और काहली को छोड़ने की। तेज़ चलिए, मुखलिस रहें। और मुझे तो एक बात समझ आती है, पहले पारे की तकमील थी तो उसमें बड़े खूबसूरत रब था, कैसे बंदा मुस्लिमून से मुखलिसून बनता है। बस ये काम करें, आप इखलास लेते आएँ, अल्लाह ये सारे बातें आपके अंदर लाएगा। अल्लाह ताला की नज़र आपके ऊपर है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आप इस काम को करने लग जाएंगे अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। क्या ये जितनी बातें हमने की से आपको फ़ायदा हुआ? क्या ये हल्के हल्के छोटे छोटे डॉट्स आपकी शख्सियत में पड़ते आ रहे हैं? मैंने सुबह बर्फ़ को बड़े करीब से देखा, करीब से देखें तो एक एक कतरा है बर्फ़ का ना, कतरा भी छोटा होता है, बिल्कुल मोती क्या, बल्कि वो सागुदाना भी बड़ा होता है, उससे भी छोटा ज़र्रा एक गिरता है आसमान से, लेकिन दूर से देखने में एक सफ़ेद चादर दिख रही है ना। ये छोटे छोटे लोग मिलते हैं ना अपनी कोशिशों में, तो दूर से एक बड़ा काम लगता है। तो हम सब हकीकत में इस ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी कोशिशों को देखना होगा। मैं सोचती हूँ कि कैसे रात पूरी में ये इतनी भी जगह में कितने कतरे गिरे होंगे, लेकिन चूंकि मुसलसल गिरे हैं तो वो काली टॉप जो है डब्बे की वो वाइट हो गई है, ये सूखी हुई टहनियाँ सफ़ेद हो गई हैं। तो हम भी कुछ कर सकते हैं, हार ना माने, आपके मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, अल्लाह मैंने नहीं मरना। अच्छा अल्लाह से आप बातें क्या करते हैं? लोल्ला अब तो जीना आया और अब तो मुझे मारना चाहता है, यकीन कर मैं अल्लाह से अब ये कहती हूँ, मुझे ना मारना, मैंने क्या करना मर के? अल्लाह तू तो बेनियाज है, तो मुझसे कुछ करा। अब तो ज़िंदगी गुजारने के सलीके आ रहे हैं, अब तो हमें मोहब्बत आ रही है, अब तो हमें ये पता है, यानी ये फिर आपकी बातें हैं, फिर वो आपके रबते होते हैं कि फिर अल्लाह ताला बंदे को वाकई उसके खामियां और उसकी खूबियां दिखाता है। इंशाल्लाह यहाँ पे इस सेशन में यहीं रुकेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।